शिक्षाएं उनके प्रदान करते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें उनसे आध्यात्मिक विषय के बारे में सुनने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम उनका पारंपरिक पद्धति से यहाँ पे स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी बल्लभ, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरा बन जा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कलयुग पावन हरि नाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको इस संडे फीस्ट की कथा में स्वागत है। सब लोग थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे तो अच्छा रहता, दूर दूर में इतना क्यों बैठे हैं, पास पास में थोड़ा आ जाए। प्रभु जी लोग एक साइड में आ जाए और माता जी लोग इस साइड में आ जाए। जितने जेंट्स हैं इस साइड में बैठ जाइए और जो लेडीज हैं इस साइड में बैठ जाइए। हरे कृष्णा। कितने लोग यहाँ पर जो अभी बैठे हैं पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, इस कौन इस जगह पर हाथ उठाए थोड़ा, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अच्छा, और कितने लोगों को इस कौन संस्था के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ऐसा कितने लोग हैं जो इस कौन के पहले कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आज बहुत ही कल का बहुत ही सुंदर एक तिथि था, 17 सितंबर को। जस्ट मैं शाम को पढ़ रहा था कि 17 सितंबर को ना, जो यहाँ पर जिनका आप मूर्ति देख रहे हैं, मूर्तिमान स्वरूप यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये हैं हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने, इनका ही देन है सारा, जो इस्कॉन संस्था हम देख रहे हैं, इतना सुंदर मंदिर देख रहे हैं, इनका ही देन है। तो कल का जो डेट था 17 सितंबर, तो उस दिन प्रभुपाद अमेरिका में पहुँचे थे। 17 सितंबर को भारत से जब निकले थे, आजकल अगर अमेरिका जाना है तो फ्लाइट पकड़ते हैं और एक दिन में पहुंच जाते हैं, है रात में बैठे सुबह पहुंच जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था 1950-60 में, बहुत जाना है तो बहुत उसके लिए आपको पूंजी चाहिए फ्लाइट में जाने के लिए। और प्रभुपाद को प्रचार करना था, उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि आप जाके ये सारा जो हमारा वैदिक संस्कृति है सारा विश्व में प्रचार कीजिए। तो ये बात है 1922 का, जब प्रभुपाद उस समय पर गांधी जी का मूवमेंट में बहुत एक्टिव थे देश को आज़ादी करने के लिए। और उस समय उनके गुरु उनको मिलते हैं कोलकाता में उल्टा डंगा जंक्शन में, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और जैसे ही प्रभुपाद उनको मिलते हैं तो प्रभुपाद को देखते ही बोलते, अरे आप तो बहुत नौजवान व्यक्ति हो, आप क्यों नहीं ये चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है सारा विश्व में प्रचार नहीं करते। तो प्रभुपाद ने देखते ही प्रभुपाद ने उनको पूछा कि भारत एक गुलाम देश है, विदेशी लोग हमको शासन कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स, हम एक गुलाम हैं, हमारा बात कौन सुनेगा, आप बोल रहे हैं कि सारा विश्व में प्रचार करो। तो जैसे ही प्रभुपाद ये बोलते हैं, उनके गुरु भी तुरंत उनको उत्तर देते हैं कि एक कृष्ण भावनामृत को प्रचार करना किसी भी परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। आप सोच रहे हो कि भारत को विदेशी लोग शासन कर रहे हैं, आज पहले शासन कर रहे थे और कोई, मुगल वो गए, विदेशी आए, विदेशी निकलेंगे और कोई करेंगे, ये चलते रहेगा समय के प्रभाव से। लेकिन ये कृष्ण भावनामृत जो है किसी भी परिस्थिति के लिए रुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये शरीर के स्तर में नहीं, आत्मा के स्तर पर है। इतने सारे लोग मर रहे हैं, उनका गति क्या है पूछे। आप खाली भारत के बारे में सोच रहे हो, मैं सारा विश्व के बारे में सोच रहा हूं। जो अमेरिका के लोग भी मर रहे हैं अमेरिका में, उनका गति क्या होगा। तो हम जो प्रभुपाद को जब सुने उनके गुरु महाराज के मुख से, तो बोले कि ये जो व्यक्ति है कुछ अलग है, ये अलग ही कुछ प्लेटफॉर्म से बात कर रहा है। मैं यहाँ पर अपने भारतीय के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन ये एक जगह पर बैठ के कोलकाता से सारा विश्व के बारे में सोच रहे हैं। प्रभु जी कोलकाता से सारा विश्व के बारे में सोच रहे हैं, एक जगह पर कोलकाता में बैठ के, उल्टा डंगा जंक्शन में बैठ के सारा विश्व का कल्याण कैसे होगा उसके बारे में सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले कि पहली बार मेरे जीवन में किसी ने मुझे परास्त किया, हार गया मैं इनसे युक्ति में, लेकिन हार के भी आनंद लग रहा है। और प्रभुपाद फिर उधर से घर चले आते हैं, और आके प्रभुपाद रात को सोते समय सोचते हैं, काश थोड़ा साल पहले बताते तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि तभी तक उनका विवाह हो चुका था, और नए नए विवाह हुआ था, सब परिवार है तो सबको छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो सोचे कि तब उनको हुआ रहता है 26 साल की उम्र हुए रहते हैं। बोले कि और कुछ साल पहले बताते तो मैं तुरंत निकल जाता प्रचार में, अभी जस्ट गृहशास्त्र में प्रवेश किया हूं। लेकिन प्रोफेसर बोलते जो भी है ये व्यक्ति ने जो बोला है ना सही बोला है, और इसके जो उपदेश मुझे दिया है उसके ऊपर मेरा जीवन न्यौछावर करने के लिए मैं रेडी हूं। और तब से प्रभुपाद बोलते कि मेरा जीवन का एक ध्येय बन जाता है कि मुझे ये कृष्ण भावनामृत को प्रचार करना है सारा संसार में। लेकिन तब वो बहुत बड़े एक फार्मासिस्ट थे, फैक्ट्री में काम करते थे, बिजनेस था, लाखों का पैसा कमाते थे, घर था, सब कुछ था, लेकिन छोड़ के जाना तो पॉसिबल नहीं, बच्चे छोटे छोटे थे। लेकिन प्रभुपाद हमेशा निरंतर अपने मन में सोच रहे थे कि मुझे करना है, करना है, जो गुरु ने बोला है सारा विश्व में प्रचार करना है, इस ये संस्था मुझे करना है कृष्ण भावनामृत। तो फिर 1932 में पहला मुलाकात हुआ प्रभुपाद का उनके गुरु के साथ, और 1933 में प्रभुपाद दूसरी बार फिर से मिले, और 1933 में प्रभुपाद को उनके गुरु से दीक्षा प्राप्त हुआ, दीक्षा लिया, प्रामाणिक रूप से दीक्षा लिया। और दीक्षा लेने के बाद प्रभुपाद ने पूछा उनको कि हे गुरु महाराज, आप तो मेरे गुरु हो गए, आप बताइए मेरे लिए आदेश क्या है। क्योंकि कोई भी गुरु अगर दीक्षा किसी शिष्य को अगर लेता है, उसको कुछ आदेश देता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मेरे लिए आपके लिए क्या आदेश है बताइए। तो दो चीज बोले, जब भी आपके पास कुछ धनराशि प्राप्त होता है मंदिर बनाइए कृष्ण राधा कृष्ण का, दूसरा ज्यादा से ज्यादा पुस्तक वितरण कीजिए, जय श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय। तो ये दो आदेश दिए, जब भी आपके पास धनराशि मिलेगा ज्यादा से ज्यादा मंदिर निर्माण कीजिए और भगवान कृष्ण के पुस्तक को वितरण कीजिए। तो ये दोनों को हमेशा मन में सोचते रहते थे कैसे करूं कैसे करूं। और 1933 हो गया, 1940 हो गया, 1950 हो गया, लगभग 50 साल हो गया, तो बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए। और प्रभुपाद घर बैठ के, क्योंकि उनको आदेश मिला था कि उनको पुस्तक लिखना है, तो घर बैठते ही वो पुस्तक लिखना चालू करते थे, कुछ कुछ लिखते थे, जब भी समय मिलता था लिखते थे। तो उन्होंने भगवद गीता लिखना चालू किया, और क्योंकि उनको गुरु ने बोला कि सारा विश्व में आपको प्रचार करना है, सारा विश्व में आपको प्रचार करना है, तो कौन सा लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। और उस समय हमारा गीता संस्कृत में रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में रहता था, तो उसको अंग्रेजी भाषा में उन्होंने घर बैठे बैठे भाषांतर किया, चल रहा था ऐसा ऐसा कर करके पूरा गीता उन्होंने लिख दिया 700 श्लोकों अंग्रेजी भाषा में, 700 श्लोक लिखा, शब्द अनुवाद, ट्रांसलेशन और टीका भी लिखा उसके ऊपर। और एक दिन का बात है, प्रभुपाद क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, कभी कभी जाना पड़ता था, दूर दूर जगह पर जाना पड़ता था, तो जब बहुत दिन बाहर थे और घर आए बाद में, तो वो गीता को ढूंढ रहे थे, गीता घर में किधर है किधर है, मिल ही नहीं रहा था उनको जो उन्होंने लिखा था, क्योंकि उनको प्रिंटिंग करने के लिए उनको पब्लिशर मिल गया था, लेकिन वो गीता कॉपी जो मेनुस्क्रिप्ट नहीं मिल रहा था। तो उनके धर्मपत्नी को पूछे कि अरे गीता मेरा नहीं मिल रहा है, आपने देखा क्या? तो उन्होंने बोला अरे हमें चाय पीने का इच्छा हो रहा था और घर में ज़्यादा कुछ पैसा नहीं था, तो मैंने इसको बेच दिया रद्दी में और उस पैसा से चाय पी लिया। तो प्रभुपाद बोले अपने बेच दिया रद्दी में, मतलब सोचिए 20-30 साल का जो मेहनत, मैं गीता का टीका लिखे थे अंग्रेजी भाषा में, और उस समय कंप्यूटर लैपटॉप नहीं था कि आप सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगा, वही एक कॉपी था हार्ड कॉपी, और अपने हाथों से लिखा था मेहनत कर करके एक एक पेज, उसको उन्होंने बेच दिया रद्दी में। तो प्रभुपाद को इतना बड़ा झटका लगता है उनके लाइफ में, बोलते कि ये जो है मेरे जीवन में मुझे सहायता करने के लिए नहीं है, इतना मेहनत करके मैंने किया है, उसको पूछना तो चाहिए था एक बार, बेच दिया। और ऐसे ही बोल रहे हैं कि उनको कुछ ठीक है बेची तो दिया, क्या प्रॉब्लम है? तब तुरंत प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आता है और प्रभुपाद उनको एक स्टेटमेंट बोलते हैं, आपको चाय चाहिए या ना मैं चाहिए, किसको चाहिए आपको? प्रभुपाद बोलते हैं आप हमेशा चाय पी रहे हैं, आपको चाय चाहिए या मैं चाहिए, आप फैसला कीजिए। तो उनके पत्नी जो थी बोल देती कि क्या आप मुझे चाय चाहिए, उनको पता नहीं था कि प्रभुपाद इतना सीरियस है, वो बोल देती क्या मुझे चाय चाहिए, चाय के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। कभी कभी हम प्रचार करते हैं, लोगों को बोलते हैं चार नियम पालन करना है, नशा नहीं करना है, और नशा में चाय कॉफ़ी भी नहीं करना, तो लोग बता रहे प्रभु चाय कॉफ़ी ये सब ठीक है, नशा सिगरेट स्मोकिंग है, नशा दारू ठीक है, चाय कॉफ़ी में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, कभी कभी देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं और हमें बोलते हैं कि अरे प्रभु जी चाय मिलेगा क्या? हम बोलते हैं हाँ मिलेगा ना चाय, हमारे कैफेटेरिया में जाए आपको हर्बल टी मिलेगा। तो वहाँ पर जाके पी के आते हैं, बोलते अरे प्रभु जी कुछ मज़ा नहीं आता इस हर्बल टी में, जो हम घर में चाय पीते हैं वैसा नहीं आता है इसमें। तो हम बोलते हैं आपको वैसा क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहाँ पर कैफीन रहता है, तो आपको जो इंटॉक्सिकेशन रहता है नशा का डोज मिलता है, हर्बल टी में वो नहीं रहता है, इसलिए वो मज़ा नहीं आता है। तो बोला अरे, तो फिर सोचते हैं फिर, तो यही चीज है नशा, मतलब नशा मतलब उसके बिना आप नहीं रह सकते। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप हर रोज एक गिलास दूध पीते हैं और एक दिन आपको दूध नहीं मिलता है तो क्या आपको कुछ प्रॉब्लम होगा? अरे मुझे दूध नहीं मिला ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। लेकिन हर रोज चाय पीते हैं उसी टाइम में अगर आपको नहीं मिलता है, व्यक्ति पागल पागल जैसा हो जाता है, कैसे भी चाहिए, उसका मतलब क्या है? एक ऐसा चीज उसमें है जो आपको मन को नियंत्रण करता है, और वही चीज है कैफीन नामक एक केमिकल रहता है चाय में, जो कि दूध में मिलके वो धीरे धीरे नशा करता है। तो इसीलिए हमको चाय भी नहीं पीते नशा में। तो प्रभुपाद ने बोले ठीक है आपको तो चाय चाहिए, बोल के रात में सोती है, सब लोग सो जाते हैं, और सुबह जब उठती है तो प्रभुपाद घर में नहीं रहते। तो बोलते अरे किधर चले गए? बोले चलो गुस्सा हुए होंगे, किधर तो गए होंगे, आ जाएंगे 4-5 दिन में। लेकिन उनको नहीं पता था कि प्रभुपाद इस बार जाएंगे तो आने वाले नहीं है, और सीधा आ गए, घर छोड़ के सीधा आ गए वृंदावन आ गए। और फिर प्रभुपाद गृहस्थ परिवार से, आपको जैसे पता रहेगा ब्रह्मचारी पर आश्रम रहता है, फिर गृहस्थ आश्रम रहता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। तो प्रभुपाद ने गृहस्थ आश्रम से सीधा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया और उन्होंने प्रचार कार्य शुरू कर लिया। 1950 में उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया और झांसी में प्रचार किए, फिर धीरे धीरे झांसी में बहुत प्रयास किया प्रचार करने के लिए, लेकिन उतना वहाँ पर उनको सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो 1955 में वो झांसी से वृंदावन आ गए, और वृंदावन में 1955 से 1965 10 साल उन्होंने वृंदावन में रहे। 10 साल, सोचिए 10 साल रह के क्या किए उन्होंने? जिस बुक को उनके पत्नी ने बेच दिया था फिर से लिखना चालू किए, गीता भागवत को अंग्रेजी भाषा में फिर से टीका लिखना चालू किए, क्योंकि अभी उनका ध्येय क्लियर था कि मुझे विदेश जाना है, इसको प्रचार करना है। लेकिन उस समय पर विदेश में प्रचार करना है तो हमारा शास्त्र सब संस्कृत भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में चाहिए, तभी तो विदेशी लोग पढ़ सकते हैं ना। तो 10 साल उन्होंने वृंदावन में रह के और वहाँ पर इस गीता भागवत को अंग्रेजी भाषा में लिखा, टीका को अंग्रेजी भाषा में लिखा। और 10 साल में जब देखते हैं कि खास करके भागवत का जो पहला कैंटो है वो कैंटो पूर्ण हो जाता है, 3 वॉल्यूम में उसको पूर्ण कर देते हैं, तब उनके अंदर एक हौसला आता है कि इसको लेके मैं अमेरिका जा सकता हूँ। तो लोग पूछते थे, स्वामी जी आप अमेरिका जा रहे हैं, लोग खींचने के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं ना, अरे आप अमेरिका जा रहे हैं घूमने के लिए, लोग अमेरिका क्यों जाते हैं, खास करके इंद्रिय भोग करने के लिए, घूमने के लिए। स्वामी जी आपको 70 साल का आयु हो गया और अमेरिका जा रहे हैं घूमने के लिए, क्या बात है। तो प्रभुपाद बोलते कि मैं नहीं जा रहा हूँ, कौन जा रहा है, ये भागवतम जा रहा है। जैसे वो पोस्ट पियन रहता है ना, खत लेके आता है, चिट्ठी लेके आपके घर में लेके आता है, तो बोले कि मैं नहीं जा रहा हूँ, ये भागवत पुराण जा रहा है और मैं उसको लेके जा रहा हूँ, मैं वो पोस्ट पियन हूँ, मेरा एक ही काम है, इस हमारा सनातन धर्म जो है इसको सारा विश्व में प्रचार करना मेरा सेवा है, इसको लेके जा रहा हूँ। तो सोचिए प्रभुपाद का इच्छा था, लेकिन जाना है तो ऐसे तो जाने को तो कुछ पूंजी चाहिए, धनराशि चाहिए, कुछ पास में नहीं था सन्यासी से। तो फिर कहाँ पर आ गए, वो बॉम्बे में आ गए, और बॉम्बे में आके उन्होंने एक सुमति मुरार जी बोल के एक माता जी थी जिनके घर में कभी कभी वो भागवत कथा करते थे, और उनका एक जहाज का कंपनी था जो कि भारत से अमेरिका जाता था। तो प्रभुपाद आके उनको बोले कि आप कृपा करके हमें अमेरिका जाने के लिए आपके जहाज में एक टिकट दे दीजिए। तो बोले स्वामी जी अमेरिका जाके करेंगे क्या, फिर ये भी चमक गई, अरे अमेरिका क्यों जाएंगे, अच्छा खासा तो भारत में प्रचार कर रहे हैं, अमेरिका जाके क्या करेंगे। बोले नहीं नहीं मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि मुझे अमेरिका जाके प्रचार करना है। तो प्रभुपाद उनको बोलते कि आपको प्रचार ही करना है तो बॉम्बे में प्रचार कीजिए ना, मैं आपका सब कुछ व्यवस्था यहाँ कर देती हूँ, आपको भागवत कथा करना है ना, मेरे घर में भागवत कथा कीजिए, आपका रहने का खाने का सब कुछ व्यवस्था मैं कर देती हूँ। तो प्रभुपाद बोले नहीं 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 हमें अमेरिका जाना है, कि उधर मुझे खाने का नहीं मिलेगा ठीक है, रहने का नहीं मिलेगा ठीक है, लेकिन मुझे उधर जाना है क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि सारा भारत में मुझे प्रचार करना है। तो ये उनका अटल विश्वास देख के सुमति मुरार जी बोलते ठीक है अभी क्या करें अभी। तो उन्होंने एक बार बोलते कि अरे यू आर टू ओल्ड एंड अमेरिका इज टू कोल्ड, यू विल डाई, डोंट गो, अब बहुत आपको उम्र हो चुका है, बुढ़ापा हो चुका है और अमेरिका में बर्फ गिरता है, अब मर जाएंगे उधर जाएंगे। तो बोले नहीं 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 मैं मर जाऊंगा ठीक है लेकिन जाना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद का जो मूड था अर्जुन के भांति, युद्ध करते करते रणभूमि में मर जाऊंगा ठीक है लेकिन घर बैठ के मैं नहीं मरना चाहता, मुझे प्रचार करने का आप सहायता कीजिए। इतना जब जिद देखती थी सुमति मुरार जी बोलते ठीक है आपको जो करना है कीजिए, टिकट एक ले लीजिए जाइए, और प्रभुपाद निकल जाते। 13 अगस्त 1965 को निकलते हैं, और जैसे मैंने बोला एक दिन दो दिन तो नहीं लगता है, कुल मिला के टोटल 35 दिन लगता है, 35 डेज। और जब जहाज में जा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने और एक परीक्षा लिया, जीवन भर तो कितना परीक्षा ले चुके थे, और एक परीक्षा लिया जहाज में, क्या हुआ, अंदर आके बैठ सकते हैं यहाँ पर, हरे कृष्णा अंदर आ जाइए बैठिए, दर्शन थोड़े समय में खुला होगा। तो जहाज में उनको 35 दिन लगता है, 35 डेज, और जहाज में कभी वो यात्रा नहीं किए थे, जहाज ऐसा फ्लाइट के तरह स्मूथली तो नहीं जाता है, पानी में ऊपर नीचे सब होता है, तो उनको सी सिकनेस चालू हो जाता है और उनको पहला हार्ट अटैक होता है जहाज में, पहला हार्ट अटैक जहाज में होता है। और वहां पर नहीं रुकता है, थोड़े समय के बाद थोड़े दिन के बाद दूसरा हार्ट अटैक होता है, और शरीर बहुत स्वस्थ गंभीर हो जाता है, खाना पीना सब बंद हो जाता है। सोचिए ऐसे अवस्था में सब लोग सोचते हैं कि अभी अवस्था में क्या करेंगे, अभी जहाज के बीचों बीच अटलांटिक का सागर में, ना आगे ना पीछे, किधर क्या लेंगे अभी जहाज में। तो उस समय प्रभुपाद को एक सपना आता है, और उस सपने में भगवान श्री राधा वृंदावन विहारी आते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, कह रहे आपका हमने बहुत परीक्षा लिया है, नहीं, बहुत परीक्षा ले लिया आप, इतना बड़ा बिजनेसमैन थे, करोड़ों का पैसा था, सब पैसा हमने खींच लिया आपसे। है बोलते हैं ना भगवान कभी कभी परीक्षा करते हैं, तो आपको बहुत प्रकार के परीक्षा लेते हैं, कभी कभी देते हैं छप्पड़ फाड़ के, कभी कभी ले जाते हैं भी छप्पड़ फाड़ के, कुछ नहीं रहता है पास में। तो प्रभुपाद इतने धनी व्यक्ति थे, बहुत पैसा थे, सब कुछ थे, लेकिन ऐसा परिस्थिति का आया कि सब कुछ चला गया, पूरा बिजनेस डाउन हो गया और सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन प्रभुपाद ने हौसला नहीं छोड़ा। तो प्रभुपाद ने अमेरिका जब जा रहे हैं जहाज में, तो भगवान कृष्ण उनको सपने में आके बोल रहे हैं कि आपका बहुत परीक्षा हमने लिया है और हर परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए, और ये अंतिम परीक्षा है आपका, इसमें भी आपने छोड़ा नहीं हौसला, अभी से आप चिंता मत कीजिए, आपके जीवन का जो दायित्व तो है मैं अपने हाथों में ले रहा हूं, और आगे जो होने वाला है इतिहास होने वाला है। तो कृष्ण और उनके जितने सारे अवतार हैं, सब अवतार वहां पर प्रकट होते हैं, कृष्ण के साथ सब अवतार प्रकट होते हैं, और ऐसा दिखता है कि प्रभुपाद के जहाज को चारों तरफ से सब अवतार हैं उनके जहाज को रक्षा कर रहे हैं और जहाज आगे बढ़ रहा है। और उस सपने के बाद जहाज का कैप्टन भी हैरान हो जाता है, बोलता है कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं था, ये अटलांटिक का सागर इतना शांत कैसे अभी, नहीं तो ये खतरनाक रूप दिखाता है अपना, तो ये क्या हो गया, इतना शांत कैसे हो गया अटलांटिक का सागर। और प्रभुपाद पहुंचते हैं अमेरिका, बोलते हैं स्वामी जी आप जब भी आना जाना करेंगे मेरे जहाज में आया जाया करो, क्यों, क्योंकि समंदर पूरा शांत था आप जब आए, नहीं तो समंदर उथल पुथल होता है, जहाज को ऊपर नीचे कर देता है, तो पता नहीं जब भी आप आएंगे मेरे जहाज में आइए। और तब प्रभुपाद अमेरिका में पहुंचते हैं 17 सितंबर 1965, कल का जो दिन था 17 सितंबर। 13 अगस्त 1965 को भारत से निकले, और कुल मिला के 35 दिन उनको लगता है, कल का डेट में 17 सितंबर 1965 को बोस्टन हार्बर में पहुंचते हैं। और प्रभुपाद ये जो जो भी सब चल रहा है ना उनके हृदय में, वो एक सुंदर सा एक 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 संगीत लिखते हैं, उनका हृदय को भावना को प्रकाश करते हैं, उनके डायरी में लिखते हैं, ये जहाज में कुछ कुछ लिखते हैं और अमेरिका पहुंचने के बाद भी कुछ कुछ लिखते हैं, तो उसको थोड़ा हम मनन करेंगे इसके दिन के ऊपर, क्योंकि ये प्रभुपाद का हृदय का प्रार्थना है। हम तो बहुत कुछ जानते हैं, प्रभुपाद ने क्या क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, बड़ा बड़ा मंदिर बना दिया, 12 साल में 14 बार घूम के 108 मंदिर बना दिया, 5,000 विदेशी शिष्यों को दीक्षा दे दिया, सब कर दिया, लेकिन उससे पीछे प्रभुपाद का भावना क्या है वो अगर हम समझेंगे तो जानेंगे ये व्यक्ति कौन है। तो आइए उस भजन को थोड़ा गा के उसको हम उसका अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, जिस संगीत को प्रभुपाद ने इस जहाज में लिखा है। और उतर के प्रभुपाद बोलते हैं, मैं जब जहाज से उतरा तो मुझे पता नहीं था कि बाएं तरफ पैर रखूं या दाएं तरफ पैर रखूं। सोचिए अगर हम कहाँ प्रचार के लिए जाते हैं, पहले कॉल कर लेते हैं, हाँ प्रभु जी हम आ रहे हैं, ठीक है गाड़ी रेडी है, पिकअप करने के लिए आ रहे हैं, कहाँ जाना है सब कुछ क्लियर रहता है, उतरते ही गाड़ी रहता है, पिकअप करके हमको लेके जाते हैं। प्रभुपाद को पिकअप करने के लिए कोई नहीं था, नया संस्कृति था, नया भाषा था, और पास में पैसा भी नहीं था, 40 रुपये लेके गए थे, क्या होगा विदेशी, 1 डॉलर भी नहीं होगा, कुछ पैसा नहीं था, नया जगह था, ऐसा नहीं कि हमेशा अमेरिका जाते थे, पहली बार गए थे, और नया सबसे बड़ा क्या, नया कल्चर, नया सभ्यता था, नया संस्कृति था, वो लोग भी कभी विदेशी किसी सन्यासी को देखे नहीं थे, फॉर सन्यासी पोशाक में किसी को देखे नहीं थे, वो लोग पहली बार देख रहे हैं कोई तो एक सन्यासी वेश में, टोटली सब कुछ नया था। उसमें प्रभुपाद पहुंच के बोलते हैं कि ये जो लिख रहे हैं उनके हृदय के जो प्रार्थना लिख रहे हैं उसको थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि 1965 में ही ये जो प्रार्थना है इसको खास करके मनन किया जा सकता है, क्योंकि प्रभुपाद का पूरा 35 दिन का जो समुद्र का यात्रा को लिख रहे हैं, और पहुंचने के बाद लोगों को देख रहे हैं, जब विदेशी लोगों को देख रहे हैं तो उनके हृदय में क्या भावना आ रहा है उसको इस कलम में उतारें। तो 7-8 ये स्टैंजा है, इसको पढ़ेंगे और प्रभुपाद को थोड़ा मनन करेंगे इसके बारे में। तो पहला स्टैंजा प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बोरो कृपा कोइल कृष्ण अध मेरा प्रति की लागी आनिले हे तो करो एवे गति। बोल रहे कि मैं सबसे बड़ा अधम हूं, वृंदावन में बाबा सन्यासी इतने बड़े भक्त हैं और क्या बोल रहे हैं, मैं सबसे बड़ा अधम हूं, मतलब सबसे नीच हूं मैं, है? और लेकिन आपने क्या किया भगवान कृष्ण, आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा वर्षा कर दिया, मैं इतना नीच हूं, लेकिन आपने मेरे ऊपर इतना कृपा बारिश किया है, वर्षा किया है। बोरो कृपा कोइलो कृष्ण अधो मेरे प्रति की लागी आनीले एथो करो एवे गति। कुछ तो आपका कारण रहेगा, प्लानिंग रहेगा, मुझे तो पता नहीं किस लिए आप लाए हो, लेकिन खींचते खींचते मैं भारत से अमेरिका आ गया, और किस लिए आया, क्या करना है हमें पता नहीं, लेकिन आपका तो कुछ प्लान रहेगा पक्का, और आपका प्लान को साकार करने के लिए आपने मुझे यहां पर लेके आए हैं, बोल के बोल रहे हैं। आछे किछु कार्य तब यही अनुमान नहे केनो आनी बाने ये उग्रस्थान। किछु तो कुछ तो आपका एक कार्य है करने के लिए, कुछ तो आपका प्लान है करने के लिए, नहीं तो ऐसा उग्र स्थान में क्यों लेके आएंगे मुझे। मैं अच्छा खासा वृंदावन में भजन कर रहा था, सात मंदिर जा रहा था, वृंदावन में भजन कर रहा था, राधा दामोदर मंदिर में रह रहा था, कितना अच्छा वातावरण था, लेकिन वृंदावन छोड़ के मैं आ गया किधर, उग्र स्थान बोल रहे हैं, अमेरिका को बोल रहे हैं उग्र स्थान, क्योंकि यहाँ पर लोग का मन और किसी में लगा रहता है, खाओ पियो ऐस करो, भजन कीर्तन कुछ उधर नहीं है। तो बोल रहे हैं कि ये उग्र स्थान है, लोग उग्र कर्म कर रहे हैं, तो यहां पर लेके आए हैं, तो कुछ तो आपका बड़ा एक मिशन रहेगा ना, इसलिए तो आप खींचते मुझे यहां पर लेके आ गए हैं। तबे जदि तब कृपा रजस्तम गुणे एरा सबाई आच्छन्न वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न। फिर क्या बोल रहे हैं, और यहां पर जो मैं लोग देख रहा हूं ना चारों तरफ, तीन प्रकार का गुण रहता है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण। किसी को अगर जेल में डाल देते हैं तो जेल का चारों दीवार में वो बंद कर रहता है और अंदर में चेन बांध देते हैं ना पैर में, ताकि जा नहीं पाएगा। लेकिन बोला जाता है कि भवसागर भी एक जेल है, लेकिन इस जेल में चार दीवार नहीं है, लेकिन कोई भी इस जेल से बाहर जाना नहीं चाहता है, कोई भी इस जेल को छोड़ के बाहर जाना नहीं चाहता है। दीवार किधर भी नहीं है, लेकिन कोई बाहर भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा चेन से बांधा गया कि जो दिखता नहीं है। कौन सा चेन है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण। तमोगुण मतलब जिसे मान सकते आप लोहे का चेन है, रजोगुण मतलब चांदी का चेन है, और सत्वगुण मतलब सोने का चेन है। तो अलग अलग प्रकार के चेन है। कोई बोलेगा अरे मैं जेल में हूं, मैं तो सोने का चेन से बांधाया हूं, बोलेगा सोने का चेन, तुझे तो लोखंड का चेन से बांधा है। बोले सोने का चेन हो या लोखंड का, जेल के अंदर ही तो है भाई, कौन सा चेन से बांधा है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेन क्या है जेल के अंदर है, कैसे जेल से बाहर निकले उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। अरे मैं सत्वगुण में हूं, तू तमोगुण में, जो गुण में भी हो, भवसागर के अंदर ही हम जन्म मृत्यु चक्र में घूम रहे हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य बोलते हैं चक्र में घूम रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे कि खास करके जो अमेरिका के लोगों को मैं देख रहा हूं, किधर भी सात्विक गुण का कोई लोग नहीं दिख रहा है, सब राजसिक और तामसिक है। राजसिक मतलब हमेशा दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम 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 कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, काम 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 काम, दौड़ रहे हैं काम के पीछे, और राजसिक है। तामसिक मतलब उदासीन आत्मा, कुछ उसको पढ़ा भी नहीं है, ड्रग्स ले रहा है, एलएसडी ले रहा है, और उधर ही सोया है रोड में, उस टाइम हिप्पी कल्चर चल रहा था। तो प्रभुपाद बोले तामसिक और राजसिक लोग यहां पर भरे पड़े हैं। फिर आगे बोल रहे हैं प्रभुपाद, वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न। अगर इनको वासुदेव का कथा का में रुचि कैसे आएगा, जो थोड़ा सात्विक रहेगा तभी तो रुचि आएगा वासुदेव के कथा में, भागवत कथा सुनने के लिए। ये राजसिक और तामसिक लोग क्या कथा सुनेंगे, और इनको मैं क्या बोलूंगा भगवान। फिर बोल रहे हैं, तबे जदि तब कृपा होए अहितुकी सकल ये संभव होए तुम्ही से कौतुकी। लेकिन एक उपाय दिख रहा है भगवान, क्या उपाय दिख रहा है, अगर आपका कृपा मेरे ऊपर आ जाएगा तो फिर कुछ जादू हो सकता है, जैसे जादूगर को जादू कर देता है ना, तो आपका अगर कृपा मेरे ऊपर आ जाएगा तब कुछ होने का संभावना दिख रहा है, बोल के प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, कि भावे बुझा ले तारा बुझे से रस ए तो कृपा करो प्रभु करी निज वस। इनको मैं कैसे समझाऊंगा, इनका भाषा अलग है, मेरा भाषा अलग है, मैं बंगाली से आया हूँ, और प्रभुपाद का अगर एक्सेंट देखेंगे हैवी बंगाली एक्सेंट रहता था, ऐसा नहीं कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे पर इंग्लिश एक्सेंट में नहीं था, हैवी बंगाली एक्सेंट था, और विदेशी लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बोल रहे हैं कि आप अगर चाहेंगे तो ये एक्सेंट भी वो लोग समझ पाएंगे, आप उनके हृदय में ऐसा स्फूर्ति दे देंगे, तो मेरा भाषा भी वो लोग समझ पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे बोल के बोल रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, तोमार इच्छाए सब होए माया बस, तोमार इच्छाए नाचे मायार परास। बोले सारा संसार भगवान नाच रहे हैं इस माया देवी का प्रभाव से, सबको नचा रही है माया देवी अपने जाल में, हैं सब दौड़ रहे हैं माया देवी का प्रभाव में। अगर आप कृपा करेंगे तो माया देवी आपके दासी है, तो वो छोड़ देगी सबको। बोलते हैं ना भगवान को क्या बोलते हैं, यह मंदिर कौन सा मंदिर है, राधा मदन मोहन। मदन मोहन मतलब क्या है, मदन मतलब कामदेव। जिन्होंने कामदेव को भी मोह लेते हैं उनको बोलते हैं मदन मोहन, उनको बोलते हैं मदन मोहन। कामदेव को भी जो मोह लेते हैं, और राधा रानी को क्या बोलते हैं, मदन मोहन मोहिनी, जो कृष्ण को भी मोह लेते हैं। तो एक बार वृंदावन में कामदेव आते हैं, कामदेव ऐसे ही घूम रहे थे, बहुत शक्तिशाली है ना, तो नारद मुनि को एक बार बोले कि चलो हम आपके साथ लड़ाई करेंगे। तो नारद मुनि बोले कि अरे और कोई नहीं मिला, मैं बाल ब्रह्मचारी मिला मेरे से लड़ाई करने के लिए। बोले हमको लड़ाई करने का इच्छा है। बोले तुम्हें लड़ाई करने का बहुत हाथ खुजली हो रहा है क्या, ठीक है तुम एक काम करो, अभी कृष्ण लीला कर रहे हैं वृंदावन में, जाओ उनके साथ लड़ाई करो। तो बोले ठीक है, कहाँ है वृंदावन, पृथ्वी लोक में जाओ, वृंदावन जाओ, वहां लड़ाई करो, अच्छा खासा तुम्हारा मनोरंजन होगा। तो तुरंत कामदेव कहाँ जाते हैं, वृंदावन में आ जाते हैं और कृष्ण को जाके ललकारते हैं, कृष्ण हमको आपके साथ लड़ाई करना है। तो लड़ाई करना है हमारे साथ, बोले ठीक है, कैसा लड़ाई करना चाहते हैं, कैसा मतलब क्या लड़ाई करना चाहता हूं, नहीं लड़ाई भी बहुत प्रकार का रहता है, सामने सामने लड़ाई करना चाहते हैं ना, छुपके छुपके लड़ाई करना चाहते हैं गोरिल्ला वॉर। तो बोले नहीं नहीं हम सामने सामने लड़ाई करेंगे। अच्छा सामने सामने लड़ाई करेंगे, ठीक है आप एक काम करो, भाद्र पूर्णिमा की तिथि पर आप आ जाओ वृंदावन, उस तिथि में हम लड़ाई करेंगे। तो बोले ठीक है आ जाएंगे। तो कामदेव चले जाते हैं, तो फिर कृष्ण जाते हैं राधा रानी को बुलाते, अरे आइए थोड़ा। राधा रानी बोलते क्या हुआ, अरे बहुत बड़ा पंगा ले लिया मैंने, कामदेव को ललकारा है, थोड़ा मुझे आपका मदद लगेगा। तो राधा रानी बोलते क्या मदद लगेगा, अभी कामदेव तो विश्व में सबको अपने मोह माया में नचाते हैं, घुमाते रहते हैं, इतने सुंदर हैं, सबसे सुंदर है कामदेव, और उनको आकर्षण करना तो मुझे भी थोड़ा आपका मदद लगेगा। तो राधा रानी बोले कैसा मदद लगेगा, ना आपका थोड़ा सुंदरता मुझे चाहिए उनको आकर्षण करने के लिए, बस इतना ही, ठीक है जब आपको लगेगा मुझे जस इशारा दे दीजिए, मैं दे दूंगा अपना सुंदरता आपको। तो कृष्ण बोले पक्का, हाँ ठीक है। और भाद्र पूर्णिमा होता है, कृष्ण कहाँ रहते हैं, पूरा रास मंडल में रास यात्रा चल रहा होता है उसी दिन, उस तिथि में रास यात्रा होता है, पूर्णिमा की तिथि भाद्र मास में, और उसी समय यहां पर पहुंचते कौन, कामदेव पहुंचते हैं और अपना सबसे पावरफुल वाण को लेकर पहुंचते कृष्ण के ऊपर मारने के लिए, कामअस्त्र को, और कृष्ण को ढूंढ रहे हैं किधर कृष्ण है, और कृष्ण बीचों बीच रास के सेंटर में कृष्ण थे राधा रानी के साथ, राधा रानी थोड़ा दूर में थी। तो कृष्ण जैसे ही देखते हैं कामदेव आ गए, राधा रानी को हाथ हिलाते हैं, राधे आ गए कुछ करो अभी। तो राधा रानी अपना जो भी सुंदरता है तुरंत कृष्ण को देती है, और जैसे ही कृष्ण को कामदेव देखते हैं, बाण अगर मारना है तो पहले चेहरे को देखना पड़ेगा ना, पॉइंट फोकस करना पड़ेगा, तो जैसे ही उनका चेहरे के ऊपर ध्यान जाता है, कृष्ण का चेहरे को देखते ही मूर्छित होकर उधर ही गिर जाते कामदेव। तो ये जो लीला होता है वो लीला का नाम है, गांव का नाम है करहेला गांव, बरसाना में गांव आता है, चंपक लगता सखी का गांव है, जहां पर भगवान कृष्ण ने अपने कर मतलब अपने हाथ को हिलाया था, राधा रानी को बुलाया था सुंदरता देने के लिए, इसलिए वो गांव का नाम है करहेला गांव, तो बहुत सुंदर गांव है। तो ये सोचिए भगवान बोल रहे कि सारा माया में जगत घूम रहा है, इसलिए आपका कृपा होगा तो माया से मुझे मुक्त मिलेगा। फिर क्या बोल रहे हैं, तो वो इच्छा होए यदि तादेर उद्धार, बुझीबे निश्चय तबे कृष्णर उद्धार, भागवत कथा से तव अवतार, धीरे होए सुने जदि काने बार बार। भगवान कृष्ण आप तो द्वापर युग में चले गए, लेकिन आप जब गए और एक अवतार में आप आ गए, कौन सा अवतार में आ गए, श्रीमद भागवत पुराण के अवतार में आप प्रकट हो गए, तो ये भागवत आपका ही अवतार है, आप अगर कृपा करेंगे तो लोग इस भागवत को समझ पाएंगे बोल के बोल रहे हैं। रजस तम हते तबे पाईबे निस्तार, हृदय रे हृदय अभद्र सबे गुछीबे तहार। आपका अगर कृपा होगा तो ये रजस तम गुण क्या है सब कुछ निकल जाएगा, क्योंकि श्रीमद भागवत पुराण है, शुद्ध सत्व है, तीनों गुणों के परे है, और आपका कृपा होगा तो ये भागवत कथा के माध्यम से उनका ये सब गुण नष्ट हो जाएगा। भगवान बोल के बोल रहे हैं, की करे बुझावो कथा बार सही चाही क्षुद्र अमी दिन हीन कौन शक्ति नाही। बोले मैं क्या कर सकता हूँ हे भगवान, क्षुद्र मतलब छोटा सा जीव हूँ मैं, भवसागर में छोटा सा जीव हूँ, अपना शक्ति से मैं किसका क्या हृदय बदल सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपका कृपा होगा तो कुछ हो सकता है। अथच एने च प्रभु कथा बोली बारे जे तुम्हार इच्छा प्रभु करो यही बार, आपका वाणी प्रचार करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला है कि ये श्रीमद् भागवत कथा को अंग्रेजी में प्रचार करो, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर आप नहीं करवाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है, इसलिए आप ही उसको करवा सकते हैं क्योंकि मैं आपका मिशन में आया हूँ। बोल रहे हैं मेरा कुछ अलग एजेंडा नहीं है, आपका ही मिशन में आया हूँ, आपका वाणी प्रचार करने के लिए आया हूँ, इसलिए आप ही उसको कर सकते हैं। अखिल जगत गुरु वचन से अमार अलंकृत करिबार क्षमता तुमार। अरे भगवान कृष्ण आप कौन है, सारा जगत के आप गुरु हैं, सारा जगत के आप गुरु हैं, और आप इस बद्ध जीव के ऊपर क्या कृपा नहीं करेंगे? आप अगर इस बद्ध जीव के ऊपर कृपा करेंगे तो इस कंठ से जो भी वाक्य आएगा सबका हृदय को परिवर्तन करेगा। आप इस कंठ से भागवत के कथा के रूप से सबके हृदय में प्रवेश कीजिए और सबका हृदय को परिवर्तन कर दीजिए, आप ही वो कर सकते हैं। तो वो कृपा होइले मोर कथा शुद्ध होवे सुनिया सबार सुख दुख जे गुचिबे। अगर आपका कृपा होगा तो मेरा कथा जो होगा शुद्ध हो जाएगा, आपका अगर कृपा होगा तो मेरा कथा शुद्ध हो जाएगा, और मेरा जब कथा शुद्ध हो जाएगा ये जो भी सुनेंगे तो उनका जो भी हृदय में अनर्थ रहेगा वो सब अनर्थ शुद्धिकरण हो जाएगा। और ये लाखरी आखिरी का जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसको प्रभुपाद बार बार बोलते हैं। आनी आछो यदि प्रभु आमार नचाते नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते काष्टेर पुतली जथा नचाओ से मते। क्या बोल रहे हैं बार बार, हे भगवान कृष्ण आपने मुझे यहाँ पर लेके आए हैं, हैं आपने मुझे, नहीं तो मैं जहाज में ही मर जाता, मैं दो दो हार्ट अटैक में कोई बचता ही क्या 70 साल के उम्र में, लेकिन आपने मेरा प्राण शक्ति रखा और आपने यहाँ तक नचाते नचाते मेरे को लेके आ गए। और क्या बोल रहे हैं, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मचे, जैसे आपका इच्छा है वैसे नचाओ, मेरा कुछ इच्छा नहीं है, मैं सब कुछ समर्पित हो गया हूं। जैसे अगर आप देखेंगे वो कठपुतलिया को नचाते हैं ना, गुड़िया का खेल अगर देखेंगे कभी कभी, नीचे गुड़िया नाचती रहती है, ऊपर से व्यक्ति रस्सी से ऐसा ऐसा नचाता है, तो नीचे से कोई देखता है, बच्चे लोग देखेंगे अरे कैसे नाच रहा है कैसे नाच रहा है, आश्चर्य हो जाते हैं, लेकिन ऊपर कोई एक व्यक्ति रहता है जो कि उंगली से नचाता है। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद बोल रहे कि मैं वो गुड़िया के तरह हूँ, मैं वो लकड़ी कास्टर और पुतली, लकड़ी का एक मैं गुड़िया हूँ, मेरा कुछ भी इच्छा नहीं है, आपके हाथ में मेरा रस्सी लो और मुझे नचाओ, जैसा नचाना चाहते हो वैसा मैं नाचूंगा, जैसे करना चाहते हो वैसे मैं करूँगा। है कास्टर और पुतली जथा नचाओ से मते। भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब दरो भक्ति वेदांत नाम एव सार्थक करो। उनका भावना देखिए, ह्यूमिलिटी बोलते हैं ना, नम्रता, ये देखिए प्रभुपाद इतने बड़े जगत गुरु हैं लेकिन नम्रता कितना उनके हृदय में कूट कूट कर भरा है। क्या बोल रहे हैं, भक्ति नहीं, बोले मेरे पास कुछ भक्ति नहीं है। लोग बोलते हैं इतना बड़ा वैष्णव है इतना बड़ा साधु है, अरे मैं बोलते मैं कुछ डिबोटी नहीं हूँ, मैं भक्ति, एक बार एयरपोर्ट में जा रहे थे भक्त लोग और वहाँ पर एयरपोर्ट में जहाँ भी प्रभुपाद उतरते थे इतने सारे लोग आ जाते थे प्रभुपाद को रिसीव करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, पूरा एयरपोर्ट जाम हो जाता था, तो बाकी जो पैसेंजर को बहुत तकलीफ होता था। तो एक बार एयरपोर्ट में जो ऑफिसर थे बोलते कि बहुत परेशानी हो रहा है, आप कृपा करके भक्तों को बोलो कि एयरपोर्ट खाली करने के लिए। तो जो एक बड़े सीनियर डिवोटी थे बोलते कि ऑल इस्कॉन डिवोटीज कम टू दिस साइड, जितने सारे इस्कॉन के डिवोटी हैं सब लोग यहाँ पर आ जाओ एक साइड में। तो सब लोग आ जाते हैं, प्रभुपाद भी आ जाते हैं उनके साथ। तो बोले प्रभुपाद नॉट फॉर यू, बोले आपके लिए नहीं बोला था मैं इस्कॉन, आई एम ऑल्सो इस्कॉन डिवोटी। तो प्रभुपाद ने बोले कि मैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हूँ, मैंने इस्कॉन चालू किया है। बोले मैं भी तो एक भक्त हूँ, इस्कॉन का ही भक्त हूँ ना, तो वो भी चले आते हैं कोने में, नहीं नहीं आपके लिए नहीं, आप तो जाने वाले हैं, आप इधर रहो। तो इससे पता चलता है नम्रता कैसे रहता है व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति इसको एक्टिंग नहीं कर सकता है, ये अपने आप काम करता है। प्रभुपाद सोचे नहीं कि अरे मैं करूं जाऊं कि नहीं जाऊं, जो नम्रता रहता है हृदय में अपने आप व्यक्ति उसके ऊपर काम कर जाता है। तो ये है प्रभुपाद का नम्रता। भक्ति नहीं वेद नहीं, क्या बोल रहे हैं? इतने सारे भागवत गीता का टीका कर दिया और भागवत गीता को लिख दिया, लेकिन क्या बोल रहे हैं? भक्ति नहीं वेद नहीं, कुछ भी वेद का ज्ञान मुझे पता नहीं है, कुछ भी शास्त्र का ज्ञान मुझे पता नहीं है, भक्ति नहीं वेद नहीं। लेकिन एक चीज है, क्या है? भक्ति नहीं वेद नहीं, नामे खूब डरो, लेकिन हे भगवान आपके नाम में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो आपका हरि नाम है जो कि कलयुग में महामंत्र है सभी जीवों को उद्धार करने के लिए, इस नाम के ऊपर मेरा बहुत श्रद्धा है, आपका नाम के ऊपर मेरा बहुत श्रद्धा है। भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो, बोले कि हे भगवान कृष्ण मैं बड़ा भक्त नहीं हूं, मेरे पास ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, लेकिन एक चीज है, आपका नाम के ऊपर मेरा बहुत श्रद्धा है और आप लोग ने मुझे नाम दिया है। क्या नाम दिया है? हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इतना बड़ा नाम दिया है भक्ति वेदांत। तो इस नाम का सार्थक आप ही कर सकते हैं, इस नाम का सार्थक आप ही कर सकते हैं। बोल के ये प्रार्थना 17 सितंबर 1965 को जब प्रभुपाद बॉस्टन हार्बर में उतरते हैं तो ये डायरी में लिखते हैं। तो सोचिए ये उनका हृदय का भावना था। और फिर आगे जो होता है इतिहास, 1965 से 1977 कुछ नहीं था पास में, उस समय पर हिपी मूवमेंट चल रहा था अमेरिका में और पाश्चात्य लोगों के जो बड़े बड़े अमीर घर के बच्चे थे सब कुछ छोड़ के रोड में नशा लेके ड्रग्स लेके सोते थे, लेकिन उनको प्रभुपाद ने परिवर्तन कर दिया, उनको क्या बनाया? वैष्णव बना दिया। अमेरिका के टॉम्सकिन पार्क में जाके बैठ गए और टॉम्सकिन पार्क में जाके प्रभुपाद हरे कृष्णा कीर्तन करने लगे, जिस लोगों को कुछ पता भी नहीं था कि राम क्या है कृष्ण क्या है, लेकिन प्रभुपाद ने हरे कृष्णा कीर्तन लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ऐसे घंटों घंटों कीर्तन लगे प्रभुपाद करने लगे। और ये कीर्तन को सुन के पाश्चात्य देश के जो लोग थे प्रभावित हो गए, जिनको भगवान कृष्ण क्या पता नहीं था, सोचिए भगवान के नाम में कितना महिमा है। जो विदेशी लोग गोमांस खाते थे नशा करते थे, जिनको कृष्ण क्या है राम क्या है उनको पता नहीं था, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनते ही हृदय में परिवर्तन आ गया और प्रभुपाद को आके बोले, हे प्रभुपाद ये आप क्या कर रहे हैं, हमको तो सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। तो प्रभुपाद बोले इसी के लिए तो मैं इतना दूर से आया हूं, बैठ जा। और उनको पहला भागवत कथा सुनाने लगे जो पाश्चात्य देश के लोग थे, और ये भागवत कथा सुन के ये लोग वैष्णव बने। प्रभु जी आगे तो मुझे बताओ आगे किधर। तो प्रभुपाद बोले कि जब ये लोग सुने तो ये लोग बड़े बड़े वैष्णव बन गए, और वैष्णव बन के इन्हीं लोगों के माध्यम से प्रभुपाद ने पहला इस्कॉन मंदिर अमेरिका का न्यूयॉर्क टाउन में बनाए इस्कॉन मंदिर, और उन्हीं को लेके फिर वाशिंगटन डीसी कैलिफोर्निया करके अमेरिका में अलग अलग जगह पर इस्कॉन मंदिर बनाए, फिर उन्हीं को लेके लंदन गए इंग्लैंड गए वहाँ पर मंदिर बनाए, वहाँ पर जॉर्ज हरिसन प्रभावित हुए और उन्होंने अपना घर को दान में दिया। सोचिए आज का जो मंदिर है लंदन का सोहो स्ट्रीट में इस्कॉन मंदिर है और जॉर्ज हरिसन का खुद का बंगला है। और इस प्रकार प्रभुपाद आगे बढ़े, जर्मनी फ्रांस रसिया, इस प्रकार 1965 से 1977 12 साल में सारा विश्व को 14 बार भ्रमण करके हर देश में एक एक इस्कॉन का मंदिर उन्होंने बना दिए और कुल मिला के 108 मंदिर बना दिए। और प्रभुपाद तो 1977 में वृंदावन में अप्रकट हो गए, लेकिन उनके जो शिष्यगण है उनका मिशन को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं, आज भी आगे बढ़ रहा है और आज के तारीख में 700 से भी ज़्यादा इस्कॉन मंदिर सारा विश्व में है। और आप लोग जो यहाँ पर आए हैं गोवर्धन इको विलेज, ये उसी इस्कॉन मंदिर का एक ये फार्म हाउस है। तो उनके एक शिष्य राधना स्वामी महाराज, जिन्होंने बॉम्बे में इस्कॉन चौपाटी मंदिर बनाए, और उस चौपाटी मंदिर का ये मंदिर जो है फार्म हाउस है जहां पर आप लोग आए हैं, गोवर्धन इको विलेज। प्रभुपाद का एक सपना था कि जहां पर भी फार्म हाउस बनेगा वहां पर गुरुकुल रहना चाहिए, गौशाला रहना चाहिए, वृंदावन फॉरेस्ट रहना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग रहना चाहिए, गेस्ट हाउस रहना चाहिए। तो ये सब चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गोवर्धन इको विलेज में। प्रभुपाद के जो शिष्य आराधना स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर रूप से इस गोवर्धन इको विलेज को यहाँ पर बनाया। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं गोवर्धन इको विलेज में, भगवान का दर्शन लीजिए और सुंदर रूप से आप वृंदावन फॉरेस्ट सब कुछ आप घूम के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम विराम करते हैं आज के संडे फीस्ट का लेक्चर, और इसके बाद खास करके हमारा खुड़ूस टाउन में गीता कोर्स हुआ था, लास्ट वीक को हुआ था, मंगलवार बुधवार गुरुवार। जो लोग भी खुड़ूस टाउन से आए हैं वो 3 दिन का गीता कोर्स का सेमिनार उन्होंने अटेंड किया था, तो आज यहाँ पर उनका सर्टिफिकेट मिलने वाला है। हिज ग्रेस सनत कुमार प्रभु जो कि गोवर्धन इको विलेज के प्रेसिडेंट है, उनके हाथों से उनको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। जो लोग भी हैं आप आगे आ जाइए, आपका नाम हम बुलाएंगे, जब आपका नाम बुलाएंगे आप आगे आके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये 3 दिन का गीता कोर्स था, उन्होंने सक्सेसफुली कोर्स को कम्प्लीट किया है 3 दिन में, तो उनके लिए आज हम यहाँ पर सर्टिफिकेट देने वाले हैं इस्कॉन मंदिर के तरफ से। हरे कृष्णा। अश्विन एस परमार प्रभु, अश्विन प्रभु आइए। अश्विन प्रभु जो कि रेगुलरली हमारे उनके बच्चे जो पहले उनके बच्चे यूथ प्रोग्राम में आने लगे और धीरे धीरे उनके बच्चों के माध्यम से प्रभु जी भी ज्वाइन हुए। प्रवीण वसंत सिंडे प्रभु, और कोई है खुड़ूस से जो आए हैं यहाँ पर गीता कोर्स के पार्टिसिपेंट? हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो हम आज यहाँ पे अभिमन्यु प्राण प्रभु का बहुत ही धन्यवाद देंगे, जिन्होंने मार्किने भागवत धर्म, प्रभुपाद जी का एक भजन है, उसमें से उन्होंने बहुत सुंदर प्रकार से प्रभुपाद जी की कृष्ण के ऊपर निर्भरता के बारे में और प्रभुपाद जी की लीलाओं के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया। तो उनका हम पारंपरिक पद्धति से धन्यवाद करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। सब लोग बोलिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो पहले सर्वप्रथम हम जो यहाँ पे सब अतिथि जो आए हैं और विशेष करके जो पहली बार यहाँ पे आए हैं उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। तो हम विनती करते हैं जो पहली बार यहाँ पे इस संडे फीस्ट प्रोग्राम में यहाँ पे आए हैं वो अपने स्थान पे खड़े हो जाए कृपया। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। तो यहाँ पे हमारा स्वागत कक्ष खड़ा है जो आपको इस प्रोग्राम के इस महामारथी के बाद आपको कुछ भेंट वस्तु प्रदान करेंगे और इस मंदिर के गतिविधियों के बारे में और आपके मन में कुछ भी आध्यात्मिकता के बारे में कुछ प्रश्न है तो उसका अनुचित उत्तर भी देंगे। तो इनका भी हम पारंपरिक पद्धति से उनका स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।